नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप संजीव कुमार वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र के गुरारू में जनसभा को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल ने आम चुनाव के लिए 22 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। पार्टी से 13 उम्मीदवार पहली बार लोकसभा के चुनावी मैदान में। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने स्पष्ट किया, लोकसभा चुनाव में अपनी उंगलियों पर स्याही लगवाने वाले छात्रों को परीक्षा कक्ष में आने से नहीं रोका जाएगा। और प्रदेश के तापमान में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। पिछले 24 घंटों के दौरान पटना समेत 9 शहरों के तापमान में गिरावट। 40.6 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ शेखपुरा प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा के पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को होने वाले मतदान को लेकर चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। इस चरण में नवादा, औरंगाबाद, जमुई और गया निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदान होना है। प्रचार के क्रम में भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज औरंगाबाद से एनडीए के प्रत्याशी सुशील कुमार सिंह के समर्थन में सर्वोदय विद्या मंदिर हाई स्कूल गुरारू के मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और रालोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस भी इस सभा को संबोधित करेंगे। इधर श्री चौधरी ने कल औरंगाबाद में सुशील कुमार सिंह के समर्थन में चुनाव प्रचार किया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रदेश में एनडीए की लहर है और यहां यह गठबंधन सभी 40 सीटें जीतकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 400 सीट जीतने के संकल्प को पूरा करने में सहयोग करेगा।
बिहार की जनता बहुत होशियार है। बिहार की जनता सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी को प्यार करती है और बिहार की जनता चाहती है 2024 में फिर से मोदी सरकार बने। वो एक एक वोट सभी समाज के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पीछे प्रधानमंत्री बनाए। लालू जी कोई भी मेहनत करे कोई जातीय उन्माद फैलाने का प्रयास वो करते हैं तो आदत रहा, ये आज नहीं, लंबे समय से यही काम वो करते रहे। लेकिन बिहार की जनता जानती है लालू जी भ्रष्टाचारी हैं, सिर्फ परिवार के लिए जीते हैं, किसी दूसरे के लिए कुछ नहीं कर सकते।
वहीं राजद के वरिष्ठ नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव आज औरंगाबाद, गया और जमुई लोकसभा क्षेत्रों में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। श्री यादव औरंगाबाद के रफीगंज, गया के फतेहपुर और जमुई के सोनो में महागठबंधन प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी भी सभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं दूसरे चरण के चुनाव के लिए भी प्रचार में तेजी आने लगी है। सभी उम्मीदवार डोर टू डोर और नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। जदयू के वरिष्ठ नेता और मुंगेर से सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कहा है कि यह लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए है। मुंगेर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि बिहार में इस बार एनडीए सभी 40 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। राष्ट्रीय जनता दल ने आम चुनाव के लिए अपने 22 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। महागठबंधन में राजद के कोटे में 23 सीटें आई हैं। इनमें से 22 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए गए हैं, जबकि सीवान सीट पर पार्टी ने अभी तक कोई फैसला नहीं किया है। हालांकि पार्टी के 6 उम्मीदवार पहले ही गया, औरंगाबाद, जमुई, नवादा, बांका और पूर्णिया लोकसभा क्षेत्रों से नामांकन दाखिल कर चुके हैं। एक रिपोर्ट।
राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र से मीसा भारती, सारण से रोहिणी आचार्य, शिवहर से रितु जायसवाल और मुंगेर से अनीता देवी महतो को उम्मीदवार घोषित किया गया है। वहीं मधेपुरा से प्रोफेसर कुमार चंद्रदीप को उम्मीदवार बनाया गया है। वे पूर्व सांसद रमेन्द्र कुमार रवि के पुत्र हैं। वैशाली लोकसभा सीट से पूर्व विधायक विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला को उम्मीदवार घोषित किया गया है। वहीं पार्टी ने हाजीपुर सीट से पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम पर भरोसा जताया है। पार्टी ने दरभंगा लोकसभा सीट से पूर्व मंत्री ललित यादव, मधुबनी से पूर्व सांसद मोहम्मद अली असरफ फातमी, बक्सर से विधायक सुधाकर सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं सुपौल सामान्य सीट पर अनुसूचित जाति के उम्मीदवार चंद्रहास चौपाल को मैदान में उतारा है। इधर अररिया से विधायक शाहनवाज आलम को उम्मीदवार बनाया गया है। जहानाबाद से विधायक सुरेंद्र यादव, उजियारपुर से विधायक आलोक मेहता, सीतामढ़ी सीधी से पूर्व सांसद अर्जुन राय और वाल्मीकि नगर से दीपक यादव प्रत्याशी बनाए गए हैं। राजद द्वारा घोषित अब तक के उम्मीदवारों में 13 प्रत्याशी पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं पार्टी ने 6 महिला प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारा है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से सविता पारी।
लोकसभा चुनाव के लिए राज्य के संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की श्रृंखला में आज जानकारी कटिहार लोकसभा सीट की। कटिहार बिहार के 5 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है, जहां दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होना है। हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
सीमांचल की कटिहार लोकसभा सीट पर पिछले 2 दशक से एनडीए का दबदबा है। पिछले 5 चुनाव में से 4 बार एनडीए के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। वर्तमान में जदयू के दुलाल चंद गोस्वामी इस सीट से सांसद है। पार्टी ने एक बार फिर से उन पर भरोसा जताते हुए उन्हें चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने तारिक अनवर को इस सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। तारिक अनवर अब तक 5 बार कटिहार संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में भी दुलाल गोस्वामी का मुकाबला तारिक अनवर से ही हुआ था। इस चुनाव में श्री गोस्वामी ने लगभग 57,000 मतों से जीत हासिल की थी। इस बार के लोकसभा चुनाव में इस क्षेत्र से कुल 9 उम्मीदवार अपनी चुनावी किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला जदयू के दुलाल चंद गोस्वामी और कांग्रेस के तारिक अनवर के बीच ही माना जा रहा है। भौगोलिक दृष्टिकोण से देखें तो कटिहार लोकसभा क्षेत्र में बरारी, कानपुर, मनिहारी, बलरामपुर, कदवा और कटिहार सदर विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इनमें से कटिहार सदर और कानपुर सीट पर भाजपा का कब्जा है। बरारी विधानसभा सीट पर जदयू, कदवा तथा मनिहारी सीट पर कांग्रेस और बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र पर सीपीआई माले के विधायक हैं। इधर लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार अभियान जोर पकड़ने लगा है। विभिन्न राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में सघन जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए कटिहार से कुमार मुकेश चौधरी।
राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्पष्ट किया है कि जो छात्र आम चुनाव में वोट डालते हैं और अपनी उंगलियों पर स्याही लगवाते हैं, उन्हें परीक्षा कक्ष में जाने से नहीं रोका जाएगा। एजेंसी ने कहा है कि सोशल मीडिया पर इस संबंध में चल रहे संदेश पूरी तरह से निराधार हैं। एनटीए ने कहा है कि उसने ऐसा कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किया है। एजेंसी ने छात्रों से कहा है कि वे ऐसी अफवाहों पर ध्यान न दें, अपने मताधिकार का प्रयोग करें और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna पर जा सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल AIR News Patna पर भी सुने जा सकते हैं। और अब पेश है लोकसभा चुनाव की गतिविधियों पर आधारित आकाशवाणी समाचार की विशेष प्रस्तुति। आज के इस अंक में आप सुनेंगे पश्चिम चंपारण और वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव को लेकर की जा रही तैयारियों और आदर्श आचार संहिता के अनुपालन पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
पश्चिम चंपारण जिले में पश्चिम चंपारण और वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र आते हैं। इन दोनों ही लोकसभा क्षेत्र में 6ठे चरण के तहत 25 मई को मतदान होना है। चुनाव घोषणा के साथ ही जिला प्रशासन इन दोनों सीटों पर आदर्श आचार संहिता के अनुपालन में जुट गया है। जिलाधिकारी दिनेश कुमार राय ने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है।
फ्रेश नोट जारी हुआ, जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गया है। किसी भी प्रकार का पोस्टर, बैनर इत्यादि चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हटाने का कार्यक्रम है और हमें लगता है कि करीब करीब सब जगह से हट चुका है और जो भी बचे हैं वो 3 बजे तक अंतिम समय दिया गया है। उन लोगों का भी ध्यान आकृष्ट किया गया है, पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग हैं।
बेतिया के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि चुनाव को लेकर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं।
प्रयास है कि हर हाल में जो आम वोटर्स अपने भयमुक्त माहौल में पाए और चुनाव में बढ़ चल गए उत्सव के रूप भाग लें, मेट्रो सहभागिता सुनिश्चित करें और ये बेतिया और बघा पुलिस जिला आश्वस्त करती है आंसुओं के माध्यम से। ऐसे व्यक्ति जो चुनाव कार्य को प्रभावित करने की बात तो बहुत दूर की बात है और जो सोचता भी है उसके सोच में भी मेरा नियंत्रण।
पश्चिम चंपारण जिला में मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर स्वीप के तहत लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता और जीविका दीदियों की मदद ली जा रही है। पहली बार वोट करने आए मतदाताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है।
मेरा नाम विशाल कुमार हुआ, मैं इस साल 2024 में अपना पहला वोट देने जा रहा हूं और मैं उसी कैंडिडेट को दूंगा जो शिक्षा में अच्छे से करे, हम लोगों को स्कूल प्रोवाइड करे, मैं उसी कैंडिडेट को वोट दूंगा।
इधर जिले के दोनों लोकसभा क्षेत्रों पश्चिमी चंपारण और वाल्मीकि नगर में राजनीतिक दलों का चुनाव अभियान भी जोर पकड़ने लगा है। आकाशवाणी समाचार के लिए बेतिया से आशीष कुमार।
प्रदेश के तापमान में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग के अनुसार 12 अप्रैल से प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है। इससे पहले तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं इस विक्षोभ के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। पिछले 24 घंटों के दौरान राजधानी पटना सहित 9 शहरों के अधिकतम तापमान में कमी दर्ज की गई। इस अवधि में शेखपुरा 40.6 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक एसके सुमन ने बताया कि अगले 48 घंटों के दौरान मौसम शुष्क बना रहेगा। वहीं तापमान में अगले 4 से 5 दिनों के दौरान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी की संभावना है।
वर्षा की कोई गुंजाइश नहीं है। 2 से 3 दिनों के बाद थोड़ी बूंदाबूंदी हो सकती है। राज्य के दक्षिण पश्चिमी और दक्षिण मध्य भाग में कुछ स्थानों में 2 दिनों के बाद थोड़ी गरज के साथ बूंदाबूंदी हो सकती है। अभी मौसम 48 घंटे तक बिल्कुल शुष्क बनी रहेगी।
इस वर्ष के अंत तक यदि तापमान में गिरावट नहीं आई तो जलवायु परिवर्तन अपना असाधारण रूप दिखाएगा। नासा के गोडार्ड इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस स्टडीज के निदेशक गॉविन स्मिथ के अनुसार यदि उत्तरी अटलांटिक या कहीं और इस गर्मी के मौसम के अंत तक तापमान में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई तो यह असाधारण घटनाक्रम होगा। यह चेतावनी नए आंकड़े जारी होने के बाद आई है कि मार्च 2024 सर्वाधिक गर्म रहा है। मौसम प्रणाली ने कहा है कि अलनीनो और मानवीय कारणों से जलवायु परिवर्तन हुआ है जिससे यह गर्मी बढ़ी है। देश के किसी भी हिस्से में मंगलवार को चांद नहीं देखे जाने के कारण ईद का त्योहार कल मनाया जाएगा। इधर ईद की नमाज अदा करने को लेकर राजधानी पटना के गांधी मैदान समेत सभी ईदगाहों में तैयारी पूरी कर ली गई है। कल गांधी मैदान में सुबह 8:30 बजे नमाज अदा की जाएगी। ईद को लेकर प्रशासनिक स्तर पर व्यापक तैयारी की गई है। वहीं बाजारों में भी खरीदारी को लेकर रौनक बढ़ गई है। अरवल जिले के अरवल सहार पुल पर स्थित महुआ बाग चेकपोस्ट के पास से पुलिस ने एक वाहन से 1 लाख रुपए बरामद किए हैं। गौरतलब है कि आदर्श आचार संहिता लागू रहने के कारण 50,000 से अधिक रुपए नकद लेकर चलना प्रतिबंधित है। मुंगेर जिले के गंगटा थाना क्षेत्र में 1.25 लाख बाबा स्थान के पास गंगटा जंगल में अचानक आग लग गई। वन विभाग के कर्मियों के द्वारा आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा को अपनी सुर्खी बनाया है। हिन्दुस्तान ने लिखा है सिवान छोड़ राजद के 22 प्रत्याशी घोषित। प्रभात खबर ने पटना उच्च न्यायालय के फैसले को तरजीह देते हुए लिखा है धोखेबाज बिल्डरों की जांच ईओयू को क्यों नहीं दी। दैनिक जागरण दिल्ली के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा खारिज किए जाने की खबर को सुर्खी बनाते हुए लिखता है केजरीवाल की गिरफ्तारी वैध। दैनिक भास्कर ने अपनी विशेष रिपोर्ट में लिखा है आशीर्वाद देने के लिए सिर पर हाथ रखना लाभदायक, यह दर्द चिंता व अवसाद को कम करने में मदद करता है, शिशुओं का वजन बढ़ाता है। आज अखबार की सुर्खी है उम्मीदवारों को सभी चल संपत्ति उजागर करने की जरूरत नहीं सुप्रीम कोर्ट। राष्ट्रीय सहारा का शीर्षक है कुलपतियों की बैठक में नहीं पहुंचे के पाठक। और अब अंत में मुख्य समाचार। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र के गुरारू में जनसभा को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल ने आम चुनाव के लिए 22 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। पार्टी से 13 उम्मीदवार पहली बार लोकसभा के चुनावी मैदान में। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने स्पष्ट किया लोकसभा चुनाव में अपनी उंगलियों पर स्याही लगवाने वाले छात्रों को परीक्षा कक्ष में आने से नहीं रोका जाएगा। और प्रदेश के तापमान में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। पिछले 24 घंटों के दौरान पटना समेत 9 शहरों के तापमान में गिरावट। 40.6 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ शेखपुरा प्रदेश का सबसे गर्म स्थान। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ।